रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
भगवान राम तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। पहले दिन वनवास का पहला दिन है, सब लोग सोए हुए हैं। भगवान राम बार बार सोच रहे हैं कि ये लोग प्रेम के कारण से अपना घर छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए और मेरे पीछे पीछे रवाना हो गए। पीछे इनके परिवार वाले दुखी होंगे, ये जंगल में मेरे साथ कहां कहां फिरेंगे। बहुत असमंजसता हो गई। सब लोग रात्रि में गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ भगवान की माया ही ऐसी हुई कि वो बहुत गहरी नींद में थे। आधी रात बीतने के बाद राम जी महाराज ने अपने सचिव सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी ऐसे चलो कि अपना रथ चला भी जाए और उसके पीछे लीक भी न मंडे। रथ जाएंगे तो लीक मंडेगी तो लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। खोज मारी रथ हाँकऊ ताता, जो रथ की लीक है उसको समाप्त करते हुए चलो। और कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है, अभी तो सोए हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि इतने लीकें लगाई कि किसी भी रास्ते से जाओ वो अयोध्या में ही जाएंगे। ओ राम इस रास्ते से गए, चलो 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 ये अयोध्या आ गई। इधर से चले चलते चलते गए इधर राम अयोध्या में आ गए। यूं चले तो अयोध्या में आ गए। वहां भुलावा आया है, यहां खोज मारी रथ को चलो और पीछे से वो रथ जो है एक ऐसा यंत्र लगा दो जिसे पता ही नहीं चले, खोज को समाप्त कर दे, रथ को ले चलो खूब दूर। सुमंत ने कहा ठीक है महाराज। रात्रि के अंदर वे वहां पर विराजमान हो गए रथ में और राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके रवाना हुए। अब शंकर जी को यहां प्रणाम क्यों किया? रात्रि में देवता भगवान शंकर होते हैं, प्रातःकाल में भगवान विष्णु होते हैं, दोपहर में ब्रह्मा जी होते हैं, रात्रि में शंकर होते हैं। क्योंकि प्रातःकाल का समय होता है वो सात्विक होता है, दोपहर का समय राजसी होता है, रात्रि का समय तमोगुणी होता है। तमोगुण के मालिक भगवान शंकर हैं, रजोगुण के मालिक ब्रह्मा जी हैं, सत्वगुण के भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे ऐसे चले तो करते करते बहुत दूर चले गए। इधर लोग सुबह जगे बड़े प्रसन्नता से, आहा राम जी का सानिध्य, चलो राम जी के पास जाके देखे, राम जी तो है ही नहीं। खोज रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, कहीं पर भी रथ का खोज मिलता नहीं है। राम राम ऐसी आवाजें लगा रहे हैं, राम राम कहीं चौंदी सी धावई, ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारा जो ये समाज है ये शोक रूपी सागर में डूब रहा है। सारा समाज एक बूढ़ा जहाज है, वो शोक रूपी सागर में डूब रहा है। एक दूसरे को लोग समझाते हैं कि देखो भाई, प्रेम करना अपने को आया नहीं। हम लोग रात दिन सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन अपने अंदर प्रेम करना नहीं आया। प्रेम करना तो जो है मछली को आता है। मछली पानी के बिना रह सकती है क्या? हम देखो राम जी के बिना रह गए, फिर काय का प्रेम हुआ? राम जी के बिना हम लोग सुखी तो नहीं रह सकेंगे। राम जी जैसे प्रिय का हमारे साथ वियोग विधाता ने लिख दिया, इससे पहले विधाता हमको मार देते तो बड़ा अच्छा था। ऐसे लोग रोते बिलखते अयोध्या में आ गए। आप देखने लगे कि राम जी आएंगे ना तभी हम दो समय भोजन करेंगे, नहीं तो एक समय ही भोजन करेंगे, नहीं तो हम फलाहार करेंगे, नहीं हम ये करेंगे। राम जी के दर्शनों के लिए तरह तरह के व्रत उपवास वगैरह करने में लोग लग गए। मनव कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सब लोग कैसे रहते हैं वो? जैसे चकवा और चकवी, चकवा और चकवी चांदनी रात में रहते हैं, ऐसे ऐसे सब जो ये लोग वहां रहने लगे। इधर राम जी महाराज रथ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ, सुमंत्र जी के साथ श्रृंगवेरपुर में आए। वहां पर बहुत बड़ा गंगा जी का घाट देखा। राम जी को गंगा जी बड़ी अच्छी लगी। देखो लोग गंगा जी नहाते ना सीधी जाके नहाते हैं, अरे सीधा नहीं, पहले गंगा जी को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद गंगा जी में नहाना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाओ, स्नान करने से पहले उसके जल को प्रणाम करो और फिर नहाओ। ऐसे लोग उठाकर जैसे गुसल खाने में नहाते ऐसे नहाने चाहिए, ऐसे नहीं, वहां प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने पहले प्रणाम किया, फिर लखन सचिव उसी किए प्रणामा, फिर लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, सुमंत जी ने, सबने प्रणाम किया। गंगा के किनारे सब लोग बैठ गए, आपस में खूब चर्चा चल रही थी। गंगा जी की तरंगों को देख देख करके राम जी महाराज प्रसन्न होकर के कह रहे थे कि देखो लक्ष्मण, ये जीवन की परिस्थितियां भी गंगा जी की तरंगों के समान ही है। तरंगे आती रहती है, ऐसी जीवन की परिस्थितियां भी आती रहती है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकई गंग तरंगा। सुमंत जी को और लक्ष्मण जी को और सीता जी को इस गंगा नदी की महिमा राम जी अपने मुख से कहकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जल उन्होंने पिया, अपना श्रम उनको दूर हुआ। ये तो केवल राम जी की एक लीला मात्र थी। निषाद राज को पता चला कि राम जी आए हैं, अपने सगे संबंधी भाई बंधु आदि सबको लेकर के बड़ी प्रसन्नता से दौड़े दौड़े आया। ओ हो महाराज, सामने अनेक प्रकार के फल फूल रखे। वो जो ही राम जी के दर्शन करता है तो अपार हर्ष हुआ और उसके आंखों से आंसू ही आंसू, प्रेम से आंसू ही आंसू आ रहे हैं। भगवान ने बहुत स्नेह से पूछा, क्यों निषाद, तुम प्रसन्न तो हो ना? देखो राम जी महाराज ने प्रेम देखा, कोई जात पात नहीं देखी, निकट बैठाया उसको, निकट बैठा कर बहुत प्रेम से पूछा। निषाद राज भगवान के इस प्रेम को देखकर मुग्ध हो गया। महाराज आपके चरण कमलों का दर्शन देखने के बाद कुशल ही कुशल है, मेरे तो सारे भाग्य खुल गए। बड़ा नीच पुरुष हूं मैं, नीची जाति में जन्म लिया, परंतु गंगा जी के किनारे हमारा धाम है, यहां रह रहा हूं। हर दृष्टि से महाराज मैं आपके सामने नीचा हूं, परंतु आपके दर्शन हो गए इसलिए मन में ऊंचापन भी आ गया। केवल आपके दर्शनों के कारण से आपसे इतनी प्रार्थना है, आप नगर में पधारो और यहां आकर के आप विराजो, ताकि लोग मेरी प्रतिष्ठा करेंगे, लोग मेरा मान बढ़ाएंगे। थापिए जन सब लोग सियाऊ, सब लोग मेरी सराहना करे, रे निषाद तुम राम को ले आए, तुम राम को ले आए, तो महाराज मेरी बड़ाई भी हो जाएगी। कितना सरल है देखो निषाद। राम जी महाराज कहने लगे, वाह निषाद तुम तो बहुत प्रिय बात बोल रहे हो, परंतु क्या करें, पिताजी ने मुझे वनवास की आज्ञा दी है और ऋषि मुनियों के वेश में और व्रत में ही मुझे रहना है, वैसा ही मुझे खाना है, वैसा ही रहना है 14 बरस तक। तो क्या ऋषि मुनि किसी गांव में रहते हैं क्या? तो गांव वास नहीं उचित सुनी, इसलिए भाई हम जंगल में ही रहेंगे, तुम्हारे गांव आ नहीं सकते हैं। निषाद राज को बड़ा दुख हो गया। ये देखो निषाद राज का जो प्रसंग है ना, ये रामचरितमानस में सिद्ध भक्त का लक्षण है। सिद्ध भक्त, सिद्ध भक्त तीन तीन शरणागत भक्त मिलेंगे, एक निषाद राज मिलेंगे, एक सुग्रीव मिलेंगे और एक जो है विभीषण मिलेंगे। तो निषाद राज ही सिद्ध है और ये है विषयी सुग्रीव। सुग्रीव विषयी है, विषयी साधक और ये विभीषण ये साधक है, और निषाद राज ये गु निषाद राज ये सिद्ध भक्त है। विषयी साधक सिद्ध सिराने, तीन प्रकार के भगवान के भक्त। एक तो विषयी भक्त, नीचे ही नीचे दर्जे का सुग्रीव। सुग्रीव नीचे दर्जे का है, क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने भगवान से स्वार्थ साधा है, पहले स्वार्थ साधा है भगवान से अपना, फिर भगवान का काम किया, वो है सिद्ध भोगी। और विभीषण है, उसने राम जी का काम पहले किया और बाद में उसने अपना राज्य लिया, तो वो है साधक। निषाद राज ने राम जी की सेवा की, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। कहते हैं शरणागति तो विभीषण की बहुत बड़ी है ना, अपना कुटुंब वगैरह छोड़ के आया, उससे बड़ी शरणागति हमारे निषाद राज की है। निषाद राज बहुत सरल, बड़े श्रेष्ठ जो था वो निषाद राज ने सामने रख दिया। विभीषण जी तो रावण की लात खाने के बाद आए हो। निषाद राज यदि ऐसे समय में निषाद राज होता तो वो जूझ पड़ता। रावण की लात खाने के बाद जब कोई उसको उपाय नहीं दिखा तब वो राम जी की शरण में आया। वो साधक है, स्वार्थ है, और विभीषण तो ये सुग्रीव तो एकदम भोगी है। राम जी की परीक्षा लेता है। दुंदुभि नाम का असुर था, उसको बाली ने एक लात से भगा दिया, इतना बल है, भगवान ने हड्डियों को फेंक दिया। वो तो उस समय मांसल था, हड्डियों को फेंकने में कौन सी बड़ी बात है, ये ताड़ के पेड़ है, इन पेड़ को पकड़ पकड़ करके हिला देता था, सब पत्ते नीचे गिर जाते थे, इतना बल था। राम जी ने एक बाण से सातों को बीन दिया, जमीन के पताल में चला गया, पानी आ गया और वापिस यहाँ आ गया, तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। विषयी पुरुष भगवान पर सीधा विश्वास नहीं करते हैं, वो जितना भोगों पर विश्वास होता है उतना भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर राम जी ने मारा नहीं, और जब मारा बाली ने सुग्रीव को, तो उल्टा राम जी को ये कहने लगा कि यदि आपको ये मालूम था कि मैं नहीं मार सकता उसको, तो मुझे क्यों भेजा आपने? अरे तूने परीक्षा ले ली, तू जान गया कि राम जी उसको मार सकते हैं, फिर भी बाली ने तुझे पीटा है, इसमें तूने तेरी कमी नहीं देखी, राम जी की कमी देखता है, इसलिए वो भोगी भगत है। भोगी देखो, राम जी की कृपा देखी, उसको अपना लिया है। और फिर सुग्रीव राजा बन गया, राम जी का काम भूल गया है, बस भोग विलास में मस्त हम राजा हो गए। लक्ष्मण जी आए तब वो घबराया, हनुमान जी ने भी चेताया, हमारे निषाद राज बिल्कुल नहीं है। अब देखो निषाद राज आए ना, ये राम जी आए, अब राम जी की सेवा में लग गया। राम लखन सी रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। अब निषाद राज ग्राम वास ने उचित सुनी, गुहु भयउ दुख भारु। जो राम जी का दुख था ना, वो निषाद राज को दुख हो गया। राम जी के दुख से सुग्रीव दुखी नहीं हुए, राम जी के दुख से विभीषण दुखी नहीं हुआ, राम जी के दुख से निषाद राज दुखी हो गए। कितने बड़े सिद्ध भक्त हैं, आगे चलिए। इतने में ही निषाद राज की प्रजा आ गई वहां, जितने बिचारे भोले भाले निषाद लोग, वो आकर के राम जी को, बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो आकर के देखती है, यूं करके देखती है, अरे ऐसे सुकुमार बालकों को पिता ने वन में क्यों भेज दिया? दूसरी कहती है, माई ऐसा जोर से मत कहो, ये तो कोई हमारे पर राजा की बड़ी कृपा हो गई, इनके देखो हमें पावन दर्शन हो रहे थे, हम कहां अयोध्या जाकर के दर्शन कर सकती हैं, अयोध्या जाना ही मुश्किल, अयोध्या चले जाएं तो राज महलों में जाना मुश्किल, राज महल तक पहुंच जाएं तो अंदर जाना मुश्किल, यहां देखो हमारे को दर्शन करने को मिल गए। एक कहीं भल भूपति की ना। इधर तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। तब वहां पर निषाद राज ने उसी समय में एक सुंदर सिंसुपा वृक्ष देखा। अब ये सिंसुपा वृक्ष क्या होता है? कोई तो कहते हैं अशोक वृक्ष होता है, कोई कहते हैं अशोक वृक्ष नहीं, एक टाली वृक्ष होता है, टाली का, इसके पत्ते यूं 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 होते हैं, यूं है उसके, यूं पत्ते होते, छोटे छोटे पत्ते, उन पत्तों के अंदर से छाया के अंदर धूप नहीं आती, वो पत्ते होते ही ऐसे ही खूब पत्ते होते हैं, और उसके अंदर बहुत ठंडक रहती है। अपने बोलते हैं शीशम, कोई बोलते हैं टाली, तो टाली हो शीशम हो एक ही बात है, यूं यूं होता है उसका वृक्ष, बहुत सघन होता है, और छोटा पौधा होता है तब से उसमें पत्ते आने लग जाते हैं। तो ऐसा सुंदर एक शीशम का वृक्ष देखा, उसके नीचे बढ़िया सुंदर कुटिया बना दी उन्होंने, इधर उधर से कुछ घास फूस लिया है और इधर रख के वहां पर बैठा दिया राम जी को, और अपने हाथ से वो दोनों के अंदर फल लाला करके रख दिया। महाराज लीजिए, महाराज इतना प्रेम निषाद राज के, निषाद राज ने लिया क्या? कुछ नहीं लिया। आप पूरे प्रकरण में देख लेना, निषाद राज भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, प्रेम दे दो। उसके मन में है कि प्रेम तो हमारा करने का होता है, अपने को प्रेम करना चाहिए, मांगे क्या? राम जी से क्यों मांगे हम? अपने तो प्रेम किए जाऊं, निषाद राज कुछ नहीं मांगता है। उसका ऐसा भाव देख करके सिये सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय सयन के न रघुवंश मनी पाय पलोटत भाई। राम जी महाराज ने पूरे प्रकरण में, वनवास के प्रकरण में लक्ष्मण जी के हाथ के फल खाए थे, परंतु आज पहले निषाद राज के खाए, एक आगे शबरी के यहां खाएंगे। तो सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज फल लाओ, नहीं नहीं निषाद राज ले आए। निषाद राज का लाया हुआ कंदमूल फल खाया उन्होंने, सुमंत जी को भी खिलाया और राम जी महाराज वहां सोने लगे। लक्ष्मण जी ने जाकर उनके पाय पलोटक पैर दबाए और जब राम जी महाराज गहरी नींद में सो गए, लक्ष्मण जी उठे और इधर अपने साथ निषाद राज को ले लिए। निषाद राज ने वहां अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ धनुर्धारियों को कहा, ए मेरे योद्धाओं, राम सीता और ये यहां विराजमान है, आप सबको चारों तरफ पहरा देना होगा, दूर दूर तक कोई पशु पक्षी न आ जाए। तो जागन लगे, बैठ ही बीरासन, सब बीरासन से यूं बैठ गए, कोई भी पशु आ जाए पक्षी आ जाए तो वे वहीं पर उसको रोक सकते हैं। ठाव ठाव राखे अति प्रीति, सब अच्छे अच्छे पहरेदारों को बुला करके, विश्वासी पहरेदारों को बुला करके थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर चारों तरफ ऐसे नहीं रखे, पहले एक राउंड, फिर उसके बाद दूसरा राउंड, फिर उसके बाद तीसरा राउंड, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, ऐसे कितने ही राउंड लगाए, इतनी सुरक्षा की गई राम जी की। और स्वयं लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। कटी भाती सर चाप चढ़ाई, अपने कमर में तरकस बांधा हुआ है, नहीं लक्ष्मण जी के साथ धनुष बाण चढ़ाए हुए बैठे हुए हैं। निषाद राज भगवान के दर्शन करते हैं, राम जी महाराज बड़े गहराई से नींद ले रहे हैं। निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए और लक्ष्मण के पास बैठे भी बोलते हैं, लक्ष्मण सुनो, महाराज दशरथ का महल कितना सुंदर होगा, इंद्र का महल भी उसके साथ बराबरी करने वाला नहीं है। महाराज दशरथ के महल में मणियों के तो फर्शे जड़ी हुई है, सुंदर सुंदर चौबारे हैं, ऐसे बने हुए हैं जैसे स्वयं कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हो। उन महलों के अंदर बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है फूलों की, क्योंकि अच्छे अच्छे वृक्ष हैं वहां, उनकी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। और ऐसे बढ़िया सुंदर पलंग है मणियों से बने हुए और वहां दीपक जगते हैं, सब प्रकार का जहां आराम है, उन पलंगों के ऊपर बहुत कोमल कोमल तकिया और गदरे लगे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत दूध के झाग के समान कोमल और स्वच्छ सुंदर पवित्र वस्त्र बिछाए हुए हैं, वहां पर राम और सीता आराम करते हैं। आज वे ही राम और सीता जंगल के अंदर घास फूस की साथरी बनाए हुए, माने शयन बनाए हुए सो रहे हैं। शमित बसन बिनु जाइन जोए, क्या बताएं, आज इनके कपड़ा भी बिछाया हुआ नहीं है, कितने थके हुए हैं, इनकी तरफ देखा भी नहीं जाता है। माता पिता परिजन पुरवासी, इनके मित्र, इनके दास और दासियां, सदा जिनको प्राणों के समान रखा करती थी, वे राम जी आज पृथ्वी पर यूं ही लुटके हुए से सो रहे हैं। क्या ये विधाता का विधान है? इधर जनक जी जिनके पिता है और ससुर दशरथ जी महाराज है, रामचंद्र जी जैसे जिसको पति मिले हुए हैं, ऐसा सीता जी का सौभाग्य है, वे पृथ्वी पर सो रही हैं, ऐसा लगता है कि ये विधाता किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, सबके सामने ये टेढ़ापन करता ही है। विधाता आज तक किसी को भी अनुकूलता नहीं देता आया, राम और सीता को भी नहीं छोड़ा, क्या बताएं? राम और सीता को भी वनवास भोगना पड़ता है, तो ये सही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सुनो लक्ष्मण, हमने ये सब कथा सुनी है, परंतु कैकेयी को क्या मिला? बड़ा उसने कुटिल व्यवहार किया, बड़ी मूर्खा है। रघुनंदन श्री राम को, जनक नंदिनी सीता को ऐसे समय में विशेष सुख देना चाहिए, ये दुख देने में लगी है। और एक इनको नहीं, सारे संसार को दुख दिया। सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए ये कुल्हाड़ी का काम करने वाली कैकेयी कहां से आ गई? निषाद राज बहुत दुखी हुए। सबसे बड़ा दुख तो राम और सीता को जमीन पर पड़े हुए देखने से हुआ। लक्ष्मण जी ने हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, निषाद राज, ऐसे अधीर नहीं होना चाहिए। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। संसार में कोई आदमी किसी को सुख दे देगा? जो आदमी स्वयं दुखी है वो दूसरे को क्या सुख देगा? जो आदमी स्वयं दुखी है वो दूसरे से कैसे सुख ले लेगा? काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने अपने कर्म का फल भोग मिला करता है। ये जो योग है, वियोग है, भोग है, अच्छा है, बुरा है, हित है, अनहित है, भ्रम है, जन्म है, मरण है, जंजाल है, संपत्ति है, विपत्ति है, सर्ग है, नरक है, पृथ्वी है और ये है, धन है, परिवार है, ये जितना जो कुछ व्यवहार है ना, ये सब सपने जैसा झूठा है। जो कुछ देखने में, सुनने में, समझने में हमारे आ रहा है, इन सब के मूल में मोह है। मोह परमार्थ की दृष्टि से, वास्तविक तत्व की दृष्टि से कोई सुख दुख है ही नहीं। सपने हो ही भिखार इंद्रिपु रंकुना कपति हो, जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिय जो। सपने होई भिखार इंद्रिपु रंक नाकपति होई। देखो निषाद, कोई आदमी सपने, कोई आदमी भिखारी है और सपने में वो राजा हो जाए, और कोई राजा है वो सपने में भिखारी हो जाए। रंक नाकपति होई, नाकपति कहते हैं इंद्र, स्वर्ग का राजा। तो कई वो भिखारी है वो स्वर्ग का राजा हो गया क्या? वो सपने में हुआ है। कोई राजा है वो भिखारी हो जाए सपने में, तो भिखारी थोड़ी हो गया, जगने पर देखो। ऐसे अज्ञान की निद्रा छोड़ने के बाद ज्ञान के प्रकाश में देखो निषाद, ये सुख और दुख और तेरा और मेरा और ये अच्छा और बुरा, संपत्ति विपत्ति कुछ है ही नहीं। जब सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। तुमने इतना सुख का वर्णन किया कि दशरथ जी का ऐसा महल वास्तव में कहां है? ये दिखता है पर है नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जब तक अपने हृदय में मोह पड़ा हुआ है तो वो आदमी अनेक प्रकार के स्वप्न ही देखता है। मोह निशा सब सोवनिहारा। जगा हुआ कौन है इस संसार में? जगा हुआ वही है जो संसार के विषय भोगों से वैराग्यवान है। जब तक संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं तब तक वो आदमी सोया हुआ पड़ा है। सोए हुए आदमी को कुछ पता नहीं कहाँ सोया हुआ हूँ, कैसे सोया हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि आप सोते हो तो खर्राटे बोलते हैं, इतने जोर जोर से खर्राटे, अब वो खुद सुनता ही नहीं है, लोग सुनते हैं। तो भाई जो आदमी गहरी नींद में उसको कुछ पता नहीं कहाँ सोया हुआ हूँ, क्या मेरा नाम, क्या मेरा पता, क्या मेरा पिता, कौन परिवार, कौन वस्तु, कुछ पता नहीं है, एकदम गहरी नींद में पड़ा हुआ है। तो जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक सब जीव अज्ञान के निद्रा में पड़े हुए हैं। भोग अच्छे लगते हैं, भोग, कोई भी भोग अच्छा लगता है तब तक मोह दूर नहीं हुआ। इसलिए अपने विवेक को जागृत करके देखना चाहिए। हो विवेक मोह भ्रम भागा, ये मोह का भ्रम विवेक से दूर होता है, ज्ञान से दूर होता है निषाद। और जब ये संसार में मोह नहीं होता तब राम जी के चरणों में प्रेम पैदा होता है। वास्तव में देखो तुम्हारे मन में राम जी के प्रति जैसा प्रेम है ना, यही वास्तव में सबसे बड़ा परमार्थ का मार्ग है। ये राम को तुमने कर्म का भोगता समझ लिया क्या, कि राम जी जो सुख दुख भोगते हैं वो अपने कर्म के फल से भोगते हैं? नहीं नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा। ये तो एक लीला कर रहे हैं निषाद लीला। वेदों ने जिसको नेति नेति से कहा है वो यहां पर विराजमान है। निषाद राज जी, भगत भूमि सुर भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल। ये तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गवों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, ताकि युग युगांतरों तक, कल कल्प कल्पांतरों तक ये कथा चलती रहे और लोग अपना जंग जग जाल संसार का जो प्रपंच है इसको काट करके सुखी हो जाए। ऐसे सखा समुदयस परिहरी मोह सिय रघुबीर चरण रत हो। सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाले हो जाओ। ऐसे राम जी का गुणगान होता रहा, निषाद राज सुनते रहे। अब आप लोग कहोगे कि निषाद राज जब राम के इतने बड़े भगत थे तो उन्होंने ये क्यों कहा कि भाई कर्म प्रधान सत्य कह लोग अपने अपने कर्मों के फल से सुख दुख भोगते हैं, तो राम जी भी कर्मों के फल से सुख दुख भोगते हैं। तो ये बात वास्तव में निषाद राज के अंदर नहीं है। कभी कभी सत्संग की चर्चा चलती हो ना, तब एक पक्ष यूं रखते हैं, यूं वो क्यों रखते हैं कि अज्ञानी लोग ऐसी ऐसी बातें कह सकते हैं, तब दूसरे लोग ज्ञानी लोग उसका उत्तर यूं दिया करते हैं। ये एक प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, ये हमारे शास्त्रों की एक शैली है, एक पक्ष को रखना फिर उसका खंडन करना, ताकि लोगों के मन का समाधान हो जाए। तो निषाद राज ने उन लोगों की तरफ प्रश्न किया है जो राम जी को केवल एक मनुष्य मानते हैं, उनकी तरफ किया है। और हमारे लक्ष्मण जी ने ऐसा उत्तर दिया है कि वो उत्तर कैसा भी कोई मूर्ख क्यों न हो, कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, उसको उत्तर समझ में आ जाए। सखा समुदयस परिहरी मोहु सिय रघुवीर चरण रत होहु। तुम सीताराम जी के चरणों में प्रेम करने वाले हो जाओ। माने तुम ज्ञान तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम और ज्यादा प्रेम प्रेमी हो जाओ। माने ये प्रेम ऐसा इसमें होते ही रहो, चलते ही रहो। चरई वेती, चरई वेती, प्रेम मार्ग में कहीं अंत आता ही नहीं है, अंत आता ही नहीं है। निषाद राज कुछ नहीं बोले। निषाद राज ने ये नहीं कहा कि आपने जो हमको वचन सुनाए हमारा अज्ञान दूर हो गया, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अज्ञान था ही नहीं। इधर प्रातःकाल हुआ, आपस में बातें होती रही। देखो इतने मग्न होकर के निषाद राज सुन रहे थे लक्ष्मण जी से कि निषाद राज का व्यवहार और मूर सकल सूरत सब बदल गई। जो व्यक्ति जिनके पास सीखता है उनका गुण धर्म उसमें उतरता है। सखा समुझे सुपरिहरी मोहु सिय रघुबीर चरण रत हो। प्रातःकाल हुआ, राम जी महाराज नहा धो के तैयार हो गए और उन्होंने बटका दूध मंगाया। बटका दूध क्यों मंगाया कि बटके दूध यहाँ लगाने से ये जो बाल है, एक तो बाल ये ऋषि मुनियों के से बाल यूं आपस में गुंथ जाते हैं ना, वो गुंथ जाते हैं बटके दूध से, और दूसरा बटका दूध लिया लग जाता है तो फिर ये दूसरी कई चीजें मिट्टी वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बटके दूध से बालों को उन्होंने धोया लगाया। उस समय सुमंत जी महाराज रोने लग गए और कहने लगे कि महाराज कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बोलिए सुमंत जी, क्या आदेश है? महाराज मुझे चलते समय देखो, ये दशरथ जी ने जितनी बातें कही वो दूसरों को ही कही, राम को विशेष बात नहीं कही। राम जी के सामने दशरथ जी ज्यादा नहीं बोले। निषाद राज कहते हैं मुझे कहा। क्या कहा? मुझे कहा कि देखो सुमंत, तुम राम को रथ पर ले जा करके और लक्ष्मण को और सीता को थोड़ा सा वन में घुमा करके ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाओ, तो गंगा जी तक ले जाओ। गंगा जी तक का तुम दिखा करके, वन दिखा करके वापस ले आओ। मुझे तो ये बात कही है। ऐसा कह करके वो पैरों में पड़ गए और रोने लग गए। राम जी महाराज ने उनको उठाया और उठा करके कहा कि सुमंत जी, आप तो हमारे पिता के समान हो। आपने तो बहुत बड़े बड़े धर्मों का शोधन किया है, खूब धर्म के विषय में जानते हो। धर्म का पालन होता है वहां आराम थोड़ा ही होता है। धर्म के पालन में थोड़ा कष्ट सहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, उससे धर्म पुष्ट होता है। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेशा। शिवि ने, दधीचि ने और हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों कष्ट सहे, करोड़ों करोड़ों। शिवि ने कष्ट सहा, दधीची ने कष्ट सहा, हरिश्चंद्र ने तो राज्य ही दे दिया, कितना उन्होंने कष्ट सहा है धर्म की रक्षा के लिए। रंतिदेव भूखे रह गए, बलि ने सब कुछ दे दिया वामन भगवान को। तो ये सब धर्म के लिए संकट सेना तो बड़ी गौरव की बात है, और सत्य की रक्षा के लिए एक 14 वर्ष का राज्य तो है, उसके छोड़ने में कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो आज धर्म के पालन का बहुत बड़ा लाभ लिया है, यदि मैं ये लाभ छोड़ देता हूं तो संसार में बड़ा भारी अपयश होता है, और जिसकी संसार में प्रतिष्ठा होती है वो यदि अपयश को प्राप्त होता है तो वो मरने के समान होता है। इसलिए आप तो मेरे पिता के समान हो, आपको मैं क्या जवाब दूं? बड़ों के सामने कुछ बोलना भी एक पाप ही होता है। मेरे पिताजी के चरणों में आप करोड़ों करोड़ों बार विनय पूर्वक प्रणाम कहना और कहना कि आप किसी प्रकार से चिंता न करें मेरी ओर से, और आपको भी मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप पिताजी दुख न पाएं, ऐसा आपको भी उपाय करना चाहिए। इधर राम जी का और सुमंत जी का ये संवाद हुआ, बीच में लक्ष्मण जी बिगड़ गए। और सुमंत, इतने वर्षों से आप लोग वहां मंत्री पद को संभाले हुए हो, यदि कोई राजा गलत करता है तो मंत्रियों का क्या कर्तव्य होता है, ऐसे करके खूब फटकारने लगे। वाल्मीकि रामायण में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरोरप्य लिप्तस्य कार्या कार्य मजानत है। यदि कोई गुरु भी है, अपने से बड़ा भी है, लेकिन वो यदि पाप करता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। बहुत कटु वाणी कही लक्ष्मण जी ने। हमारे तुलसीदास जी बहुत कोमल हृदय के हैं, इतना ही कहा कि लक्ष्मण जी ने कठोर वाणी कही। राम जी लक्ष्मण के मुंह पर हाथ रख दिए। अरे लक्ष्मण चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पिता के लिए ऐसे मत बोलो। सुमंत जी से कहा कि देखो सुमंत, इसका तो मैंने मुंह बंद किया, ये तो रुकता नहीं है, तुम अपने मुंह से जाकर ये बात मत बोलना, ये बात मत बोलना दशरथ जी से। और हमारे सुमंत जी इतने विचित्र है कि दशरथ जी को बोल ही दिया। राम जी ने मना किया और दशरथ जी को बोल दिया कि साहब लक्ष्मण जी तो बहुत बिगड़ गए। अब कहो राम जी ने मना किया, सुमंत जी इतने भक्त हैं, क्यों बोले साहब? वो बोले इसलिए कि दशरथ जी को इस बात से खुशी होगी। राम जी ने ये भी तो कहा ना कि दशरथ जी महाराज जैसे प्रसन्न रहे वैसा आपको करना चाहिए, हमारे विषय में शोक नहीं करे ऐसा उपाय आपको सुनाना चाहिए। तो वही जाकर के कहा कि लक्ष्मण जी उनकी सेवा में है महाराज, लक्ष्मण जी तो आपको नहीं छोड़े, कोई दूसरा हो तो देखो, जो आपको और बाप को नहीं छोड़े, दूसरा कोई राम जी का अनिष्ट करके देख लो, लक्ष्मण जी छोड़ेंगे क्या? बड़ा संतोष हुआ दशरथ जी को, क्या छोटा भाई ऐसी रक्षा में तत्पर है, जो मेरे लिए भी कुछ कह सकता है तो दूसरे को तो वो क्या समझता है। प्रभु पर जे बड़ा अनुचित जानी, सकुचि राम निज सफद देवाई, अपनी सौगंध गलाए तुम्हें मेरी सौगंध है, क्यों नहीं आए? राम जी ने तो मना किया, मैंने कह दिया। राम जी के मना करने का भाव क्या है कि आप पिताजी को कष्ट न हो, और पिता का रुख देखा ना कि ऐसे कष्ट पाएंगे, ये बच्चे हैं कौन क्या बोलेगा, राम की रक्षा कौन करेगा, ये कैसे रहेंगे। एक दिन में निषाद राज के यहां देख लिया ना कि यूं पहरे देकर के रहते हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी राम जी का पहरा देकर के रहते हैं, और आपके लिए भी उन्होंने ऐसे शब्द किए दूसरे, हाँ तब उनको संतोष हो गया। तो राम जी की जो सौगंध है उस सौगंध से वो टले नहीं है सुमंत जी, क्योंकि पिता के दुख की निवृत्ति के लिए ही बोल रहे थे। पिता को दुख न और पिता को सुख मिला तो खूब कहो ना। फिर सुमंत जी ने कहा कि सुनो राम, मुझे दशरथ जी ने और भी एक बात कही है कि सीता है वो किसी प्रकार से जंगल का कष्ट सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम रघुवर को यही बात बोलना कि कम से कम सीता को वापिस भेज देवे अयोध्या में, नहीं तो मेरे ये प्राण है इनका कोई आधार नहीं रहेगा, जैसे जल के बिना मछली होती है ऐसे मैं तो मर जाऊंगा। सीता की खुशी आए वहां रहे, चाहे वो अपने मायके रहे चाहे ससुराल में रहे, पियर में रहे चाहे ससुराल में रहे, जहां उसको जैसा भी मन माने सब जगह उसके लिए सुख है, नहीं तो भाई तुम जो है हमारे तुम्हारे पर बड़ी भारी विपत्ति आए। ये विपत्ति बिहान, जब तक विपत्ति का समय है तब तक की बात है, फिर तो ये राम जी के साथ रह जाएगी। इस प्रकार से राजा ने बहुत प्रकार से बात कही है। अब महाराज क्या जाके कहना है, क्या करना है वो आप बताओ। राम जी महाराज ने कहा देखो सीते, हमने तुमको पहले ही कहा था तुम वापिस चली जाओ, सुमन जी के साथ वापिस अयोध्या चली जाओ। देखो सास ससुर की परिवार की सबकी सेवा करना और सबकी चिंताओं को दूर करना स्त्री का बहुत बड़ा धर्म होता है, मैंने पहले कहा था। अब देखो तुमको सुमन जी भी पिताजी का ये संदेश सुना रहे हैं। सीता जी सब बात सुने, सुनकर के और कहने लगे निषाद राज जी से कि सुमंत जी से कहने लगे, सुमंत जी हमारे पति बड़े दयालु हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। राम जी को भी साथ में सुना रहे हैं। तनुता जी रहती झांकी में छेकी, एक बात बताओ कि क्या शरीर को छोड़ करके छाया अलग रह सकती है? मैं तीन प्रश्न करती हूं आपसे। शरीर को छोड़कर छाया अलग रह सकती है, सूर्य को छोड़कर के किरण अलग रह सकती है, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी अलग रह सकती है? इसका कोई जवाब नहीं था। फिर निषाद राज को कहने लगे, निषाद राज जी आप तो मेरे पिता के समान, ससुर के समान हो, आपके सामने शब्द बोलना भी मेरे लिए अनुचित है, लेकिन करूं क्या, आप बुरा मत मानना। आर्य पुत्र श्री राम के बिना, इनके राम के चरण कमलों के दर्शन किए बिना मेरा जीना व्यर्थ है। सारे संबंध, चाहे आपने पिता बताए, चाहे आपने ससुर जी बताए, चाहे अयोध्या का बताया, सब सब धूड़ के समान है। मेरे पिता का वैभव मेरे से छूटा हुआ, मेरे से भूला हुआ थोड़ा ही है। सब राजाओं के श्रेष्ठ है, सब राजाओं में श्रेष्ठ है। बड़े बड़े राजा लोग मेरे पिताजी के सिंहासन के सामने रखी हुई जो पीठ है उसके ऊपर ही सिर झुकाते, मुकुट मणि वहां पर लगाते हैं। इतने बड़े मेरे वो पिताजी हैं। और ससुर जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट है, 14 भवन में उनका प्रभाव है। जब वे स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र आकर खड़े होते हैं कि आइए दशरथ जी महाराज, आइए आधे आसन पर आप बैठिए। ऐसे मेरे ससुर हैं। और क्या मेरी सासुओं की मैं बड़ाई करूं, परंतु बिना राम जी के चरण कमलों के बिना मुझे ये सारा सुख कुछ भी सुख नहीं मालूम देता है। मुझे तो ये जंगल बहुत अच्छे लगते हैं, उबड़ खाबड़ कंकरीले पथरीले कटीले मार्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूं कि यहां बहुत हाथी सिंह वगैरह रहते हैं, कोल किरात पशु पक्षी यहां रहते हैं, पर क्या करूं, एक प्राणपति का मेरा संग है, मुझे इनका संग मिला हुआ सब अच्छा लगता है, मुझे प्रकृति का वातावरण बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी ओर से सासू ससुर को प्रणाम बोलिएगा और कहिएगा कि मेरी तरफ से आप कोई चिंता न करें, जब मेरे प्राणनाथ मेरे साथ है, देवर जी मेरे साथ है, तो आप उनको बोल देना किसी प्रकार से चिंता न करें। सुमन जी तो भाई बाणी भोल करके चुप हो गए। सुमन जी को न तो दिखता है, न सुमन जी को कोई सुनाई देता है, वो विकल हो गए। राम जी महाराज ने उनको सांत्वना दी, खूब बातें चली और जतन अनेक साथ हित कीने, राम जी को साथ में लेने के लिए अनेक युक्तियां लगाई, पर राम जी ने सब युक्तियों का खंडन कर दिया। रता हा के उहा राम तन हेरी हेरी ही ना देख निषाद विषाद बस धुनाई सी सपचिताय। राम जी का रथ चल रहा है और घोड़े भी है वो हिन हिनाते हुए चल रहे हैं, बड़े वो भी दुखी है। निषाद राज ने देखा कि अरे घोड़े पशु पक्षी वगैरह में भी इतना राम जी के प्रति प्रेम है, तो ये वन में जाएंगे वो भी बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। जासु भी योग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु भी तो ये ही कैसे, जिनके वियोग में प्रजा ये पशु पर इतने दुखी हो रहे हैं, तो फिर माता पिता और प्रजाजन की तो बात ही दूसरी है। बर बस राम सुमंत पठाए। फिर राम जी महाराज ने सुमंत जी को कहा, सुमंत जी अब आप पधारो, अब आप चले जाओ और हम गंगा जी के किनारे की तरफ रवाना होते हैं। सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को तो भेज दिया और स्वयं अपने गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
जय जय